Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
कानून की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये कानून की व्यवस्था हमारे मनु जी महाराज ने बनाई है। जो शास्त्र जो नियम बना रहे हैं उनका तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। मैंने निवेदन किया था कि चौराहे पर बत्ती जग रही है लाल और आप उसका पालन न करो तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कोई न कोई जीवन में नियम तो पालना ही पड़ेगा। उस नियम का नाम ही तो धर्म है। धर्म माने और कुछ नहीं है बड़ा भाई, धर्म माने नियम। तब नियम किया कि आहार व्यवहार विचार ये हम शुद्ध रखेंगे। तो आहार विहार व्यवहार विचार यदि शुद्ध होंगे तो तब काम सब बनेगा। तो वो कैसे शुद्ध होंगे? बोले वो नियम से। नियम से भोजन करो, आहार आहार माने आहार्यन्ते इति आहारा, जो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, जो खुराक उस सब खुराक को आहार कहते हैं। आहार माने सामान्य रूप से मुंह में जो भोजन लिया जाता है उसी को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आहार्यन्ते इति आहारा, आहार शुद्ध सत्व शुद्धा, आहार सिद्ध होगा तो सत्व सिद्ध हो जाएगा। और आहार शुद्ध हो सत्व सिद्धि ही, और सत्व सिद्ध हो बोले अगर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ध्रुवा स्मृति ही, तो तुम्हारी स्मृति यादगार ताजी हो जाएगी। और स्मृति लब्धे ग्रंथीनाम विप्रमोक्षः, और अगर स्मृति आ गई तो सब गांठें कट जाएंगी। जो गांठ बताई ना, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, श्रुति पुराण बहु कहि से उपाई, छूट न अधिक अधिक उरझाई। और उरझ जाती है, छूटती तो नहीं है। तो ग्रंथी नाम विप्रमोक्षः, लो अब मृदित कसायाय। अब एक और बात आ गई, फिर क्या होगा? बोले तमसः पारमस्तात्। क्यों? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। उस परम तत्व को जान करके ही ये तमेव विदित्वाति मृत्युमेति मौत को पार किया जा सकता है, और कोई उपाय दुनिया में नहीं। तो यहां बड़ी बढ़िया बात बताई कि ये भाई पहले तो आहार शुद्धि होनी चाहिए। आहार यंते इति आहारा, जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की जो खुराक है, जैसे आंख की खुराक रूप है, कान की खुराक शब्द है, नाक की खुराक सुगंधी है, ऐसे अलग अलग इंद्रियों की खुराक है। वो खुराक जब भीतर जाती है तो भीतर जाके वो सत्गुण पैदा करती है कि रजोगुण करती है कि तमोगुण करती है, क्या करती है? जैसे बिजली का खुला हुआ तार कहीं पड़ा है और उंगली में जरा सा टच होकर जाए, छू जाए, तो केवल उंगली में उस बिजली का प्रभाव पड़ेगा कि पूरे शरीर भर में प्रभाव पड़ेगा? बोलो भाई। हाँ, अब हम बकते रहें और तुम सुनते रहो तो कभी कभी तुम्हें भी बोलना चाहिए। तो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से आंख के दरवाजे से, कान के दरवाजे से, नाक के दरवाजे से वस्तु जाने पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आप मंदिर में जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, लक्ष्मीनारायण भगवान का, वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे, आंख के दरवाजे से दर्शन होगा, लेकिन पूरे शरीर में आपका शुद्ध सत्व अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आप किसी फिल्मी एक्ट्रेस का दर्शन करोगे तो पूरे शरीर भर में रजोगुण आ जाएगा, तो उससे मन भी, मन व बुद्धि तो अंतःकरण उसी में आ गया। तो आहार का मतलब आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए भोजन ये नहीं कि जहां जाए तहां नियम बैठ गए होटल में खाने लगे। बड़े शहरों में तो ये नियम है, आप लोग माफ करें भाई अगर कोई ऐसा हो, इतवार के दिन घर में भोजन नहीं बनता, कहीं आज तो छुट्टी आज चलो होटल ज्वाइन करें। अब वो कौन परोस रहा है, किसने बनाया है, कैसे हाथों से दिया जा रहा है, इसका कोई विचार नहीं। और हम क्या कह रहे हैं कि जीवन में कोई न कोई नियम तो पालना ही पड़ेगा, उसी नियम का नाम आचार है। चर गतौ चर गति भक्षणयो, चाल चलन खान पान रहन सहन, छह बातों में ये चर धातु का प्रयोग होता है, उसी में आंग उपसर्ग लगा दिया आचार बन गया, प्रा उपसर्ग लगा दो तो प्रचार हो जाएगा। तो कहने का अर्थ एक यह है कि नियम जीवन में जब आप धारण नहीं करेंगे तो ये जिधर चाहे उधर गाड़ी चली जाए। मैंने बताया कि गाड़ी का ब्रेक जो है वो सदाचार है, और जब ब्रेक ही गड़बड़ है, फेल है, तब तो कहीं टकराई जाएगी गाड़ी। अब तो ऐसी कारें हैं जिनमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का अर्थ एक यह है कि आपको कोई न कोई नियम जरूर पालना पड़ेगा। बोलो सब बोलो, शरीर श्रमी मन संयमी बुद्धि विवेकी हृदय अनुरागी चित्त में समता व्यवहार में असंगता तत्व में एकता आती है। जब आहार, बोलो आहार, विहार, व्यवहार, विचार शुद्ध होता है। अब दोहराए तो गए महाराज, और होटल की अगर याद आ गई तो फिर गड़बड़। उसमें लिखा रहता है हिंदू होटल, अगर हिंदू हो तो चल जाओ आगे बढ़ो, और अगर हिंदू नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं बैठ जाओ। उसमें लिखा रहता है हिंदू होटल। अब और कुछ अर्थ हो तो हमें नहीं मालूम, हम तो यही अर्थ लगाते हैं। तो जब पहले, सबसे पहले आहार माने भोजन, कौन इंद्री की क्या खुराक है। अब तुलसी के आप सुगंधी लेंगे तो आपके भीतर सत्वगुण रह जाएगा कि भाई तुलसी की सुगंध आ रही है, ठाकुर जी पे चढ़ी होगी या पंचामृत में होगी, ऐसे सुगंधी, सुगंधी से आपको सत्वगुण रजोगुण तमोगुण पता चल जाएगा। तो जीवन में एक तो ये नियम रखो कि नियम पालन करो। अगर बी लेफ्ट, अगर बाई ओर हो बताया जा रहा है तो बाएं चलो, ये नहीं कि दाहिना रास्ता खाली है तो गाड़ी उधर ही कर दो। फायदा न देखो, कायदा देखो। जब कायदा देखोगे तो फायदा भी होगा, और एक बार फायदा न भी हो तो नुकसान तो नहीं होगा। और फायदा देख के अगर चलोगे, कायदा का अलग कर दोगे तो फिर नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कायदा देखो, फायदा न देखो। अच्छा, अब नियम पालन कर दिया आपने, आहार शुद्ध हो गया, आहार भोजन बनाने वाला ठीक है, भोजन अपने सुपार्जित धन से आया हुआ है, गेहूं भी ठीक है, कीड़े ने नहीं काटा है। कई बल्कि वैष्णव लोग तो आहार पर बहुत ध्यान देते हैं, उनके यहां विवेक विमोक कल्याण अवसाद जो हैं, तो विवेक माने है भोजन, भोजन शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, छान जल पिए छान के गुरु करे जान के, तो इसलिए उनके यहां ये कहावत है। भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो वो भोजन हर इंद्री का, हर एक खुराक है, अकेला अन्य अकेला न मान लेना। हर एक इंद्री की खुराक कैसे दी है आपने, तब आहार होगा। फिर विहार, कैसी जगह पे बैठे हो, जिस जगह पे तुम बैठे हो उस जगह में जुआ खेलता है कि बीड़ी सिगरेट पीने वाले बैठे हैं, कैसा वातावरण वहां का एटमोस्फियर, जहां तुम बैठे हो विहार। फिर आपका व्यवहार, आपसे व्यवहार करने वाले और आप व्यवहार करने वाले कैसे हो। तो आहार विहार, जब आहार शुद्ध होगा तो विहार भी शुद्ध हो जाएगा। हमारे यूपी के राज्यपाल रहे अभी विष्णुकांत जी, हमारे गुरु भाई थे, तो वो गिलास रखते थे अपना और उनकी प्रसिद्धि हो गई, वो जूस ही लेते थे सब जगह। पार्टी, राज्यपाल को तो रोज पार्टी करनी पड़ेगी, उन्होंने अपना गिलास निकाला और कर दिया, तो उनके लिए पहले से जूस रहता था, मौसमी का है, संतरा का, अनार का, जिसका चाहिए वो जो जूस ही केवल लेते हैं, और कुछ लेते ही नहीं थे। दिन में कई बार ऐसा मौका पड़ जाता था तो बस जूस ही पीते रहते थे और शाम के अपना भोजन किया आके। तो देखिए, जो नियम पालन करने वाला व्यक्ति होता है, ये नहीं है कि अरे अब हम डीएम है तो अब हम कैसे भाई बार बार ही हमें तो चाय पीनी पड़ती है। नियम सुनियम, अब उनकी यही प्रसिद्धि हो गई। तो जो नियम आप पालन करेंगे उस नियम पर व्यक्ति भी चलने लगेंगे, आहार व्यवहार हो जाएगा। फिर तुम्हारा व्यवहार कैसा है, और तब तीन चीजें अगर शुद्ध होंगी तो विचार भी शुद्ध हो जाएगा। विचार बाद में है, पहले आहार। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ, जब सत्व शुद्धि हो गई, ध्रुवा स्मृति, तो तुम्हारी स्मृति ध्रुव हो जाएगी, निश्चय। निश्चय जिसको कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, एक निश्चित अर्थ हो जाए। और स्मृति लब्ध मृदित कषाय, तब तुम्हारा जो मन है वो मलिन था वो शुद्ध हो जाए। ये बात शुद्ध अंतःकरण की है। तो जब आहार शुद्ध तो विहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध और विचार भी शुद्ध। विचार तभी शुद्ध हो सकते हैं जबकि आपके आहार विहार व्यवहार शुद्ध होगा। नियम से चलोगे, कायदा देखोगे न कि फायदा। कोई न कोई नियम तो पालन करना ही पड़ता है भाई। आप लोग रात दिन रहते हो व्यवहार में, तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। तो जैसे अन्य नियमों का पालन करते हो, अब आजकल कंप्यूटर से सब हो रहा है, उसमें भी नियम है। नियम अगर पालन नहीं करोगे तो गड़बड़। फैक्स है, ईमेल है, मोबाइल है, सब नियम है। अब मोबाइल में घंटी लग रही है, आप स्विच ही ऑन न करो तो सुन लोगे आवाज। इसका मतलब यह है कि पहले एक सच्ची घटना, एक सज्जन के कमरे में बिजली नहीं जल रही थी। बड़े आदमी झटपट बुलाया इंजीनियर को, भाई सब आंगन में जल रही, सब जगह जग रही, हमारे कमरे में क्यों नहीं जग रही। मिस्त्री आया, उसने इधर उधर देखा, खंभा भी ठीक है, खंभा ठीक ना होता तो बिजली कैसे आती। आंगन में ठीक है, तुम्हारे कमरे बल्ब बिल्कुल ठीक है, तार पकड़ने वाला है। देखा तो बेड स्विच तकिया के नीचे दबा था, ऑफ किया हुआ। तो अगर बेड स्विच तकिया के नीचे है, बेड स्विच जानते हो क्या है, बुद्धि। अगर बेड स्विच नीचे दबा हुआ है तो फिर कैसे जगेगा। इसी प्रकार से ये विचार है, बुद्धि से जो विचार करते हो वो शुद्ध है कि नहीं। आहार विहार व्यवहार विचार शुद्ध होना चाहिए। इसलिए अभी आप लोगों ने दोहराया, मन संयमी हो, बुद्धि विवेकी हो, हृदय अनुरागी हो, तब चित्त में समता आती है। ऐसे थोड़ी बोले तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा स्तुति बिल्कुल सम हो जाए, चित्त समता में आ जाए, बोले कोई निंदा करे स्तुति करे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर की तो कर रहे हैं। ये बहुत कठिन काम है। तो शुद्ध सत्वा माने पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, और वो चार चीजों से शुद्ध होता है। पहले तो आहार विहार व्यवहार विचार शुद्ध हो। दूसरी बात एक यह है कि जितने भी साधन बताए गए, पाठ पूजा गंगा दर्शन और मंदिर में भगवान का दर्शन करना, जो भी नियम बताए गए, उन नियमों को पालन करने से आजकल के लोग तो उनको हंसते हैं, लेकिन उनमें बड़ा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भरा हुआ है। ऐसे वैसे नहीं है। पंचामृत आप लेते हैं, तुलसी दल लेते हैं, उसका बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। जो लोग उस रहस्य को नहीं जानते और इसकी हंसी करते हैं, इसका सेवन नहीं करते हैं, वो घटी में है। आज गीता रामायण भागवत महाभारत इनको पढ़ने के लिए व्यक्ति की इच्छा नहीं होती। अखबार पढ़ेगा तो गुड़िया माया नोवेल पढ़ेगा, उसका नाम ही नोवेल। तो जब नोवेल नाम है तब फिर उसको पढ़ने से क्या मिलेगा? उतनी देर रामायण सुनो। कितना सुंदर संकेत मैंने कल देखा राम कथा में, हमारे व्यास जी यही पांचवें मंजिल में शाम के 5:30 से 7:30 तक सुना रहे हैं। कई बातें ऐसी जीवन की मिलती हैं जिनको जीवन में उपयोग करना चाहिए, और जीवन में जब उपयोग नहीं कर पाओगे तो फिर अंत में पछतावा ही तो लगेगा। इतना बढ़िया सिद्धांत भरा हुआ है, यही सब पूजा पाठ में। पूजा पाठ में जो सिद्धांत भरा है वो आप उसको हंसी समझते हो, अरे तो बड़े भगत बने, ऐसे करके ठुकरा देते। लेकिन रोज जप में, रोज स्तुति में, मंदिर के भगवान दर्शन में समदर्शिता आती है। सब में परमात्मा है इस बात का तो अंदाज मंदिर में ही लगता है। जब आप पत्थर तराशा जा रहा है, आपने तो नहीं देखा होगा, मैंने जयपुर में घंटों देखा, पत्थर तराशा जाता है, छीलता जाता है, और वो पत्थर जब तराशा जा रहा है, छिटक छिटक गिरता है, तब उसमें चार प्रश्न हो जाते हैं। एक, कहां बना, किसने बनाया, कितनी निछावर है, ये जा सकता है कि नहीं। और जब वही तराशा हुआ पत्थर मंदिर में पहुंच जाता है और मूर्ति में आप भगवान का दर्शन करते हो, तो चारों प्रश्न गायब, हाथ जुड़ जाते हैं। मनोज एवं मारुतुल्य वेगम या नीलांबुज श्यामल कोमलम या वंशी विभूषित करा नव नीर दावा, ये क्यों है? अब आप देखिए ये क्या परिवर्तन क्यों हो गया? मूर्ति तो वही है जो वहां लाई गई है। तो इसी तरह से जैसे पत्थर तराशा जाता है, अभी ये यत्न हो रहा है, ऐसे बुद्धि को मांजा जाता है, बुद्धि को शुद्ध किया जाता है, तब शुद्ध सत्वा प्रयोग आया, अंतःकरण तब शुद्ध होता है। तो आहार शुद्धि विचार शुद्धि होना चाहिए और नियम पालन करना चाहिए। रोज जो आप नियम पालन कर रहे हो उस नियम में उबना नहीं चाहिए। बोले मन नहीं लगता है, जब क्या करें, मन लगे या न लगे तुम तो लगो, तो जब तो करो, अपना जितना है नियम है उस नियम का पालन करो, नियम से ही चलना चाहिए। तीसरी बात और है, जैसे आपने सुना कि सदाचार ब्रग है, अब ब्रेक नहीं लगाओगे गाड़ी में, ऐसे एक जीवन की भी गाड़ी है। ये जो पूर्वजों ने परंपरा बनाई उसी परंपरा से चलना चाहिए। हमारी पूर्वजों की परंपरा, आज बेटा जरूर कहता है अपने बाबा से कि तुम्हारे समय में मोबाइल था नहीं, अब मोबाइल है, तुम्हारे समय में ईमेल नहीं था, अब ईमेल है, तुम ये जानते नहीं हो कंप्यूटर क्या चीज है। वो नहीं कंप्यूटर जानते हैं, जरा ध्यान दो तो परंपरा जो चल रही है हमारी, हमारी संप्रदाय की, हमारी धार्मिक व्यवहार की, उस परंपरा का पालन अवश्य करना चाहिए। उसको ये नहीं ठुकराओ कि अरे ये तो रूढ़ है, हम अंधविश्वासी हैं। हम अंधविश्वासी नहीं होते, ये पता ही नहीं कि विश्वास तो अंधा ही होता है। विश्वास तभी किया जाता है अपरिचित व्यक्ति से, अपरिचित वस्तु से, अपरिचित से। अच्छा, अगर विश्वास नहीं है तो तुम दुकानदार पर जाओगे, दुकानदार को तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हें दुकानदार पर विश्वास नहीं है। सौदा मान लो उसने तौल दी और आप लेके चल दिए, पैसा न दे तो उसको तो विश्वास है कि पैसा देगा। पहले सौदा दे देता है तब पैसा देते हैं। तो विश्वास जो होता है, आप जरा देखो, पति का पत्नी पर, पुत्र का पिता पर विश्वास नहीं होगा तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। यही परंपरा है, इसी को परंपरा कहते हैं। आपने उपनिषदों में सब जगह देखा कि पहले आ आ लिखाया, किसी गुरु ने तो बताया ना, आ आ ई ई अथवा ए बी सी डी या अलिफ बे पे ते, जो कुछ लिखाया वही चला आ रहा है, अभी कुछ नया परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे घुमाए के आ बनाते थे वैसे बनता चला आ रहा है, आ आ ई ई यू, जो सबसे पहले गुरु जी ने बताया। तो आप देखिए, कोई भी ज्ञान आपकी गुरु परंपरा ही से तो हुआ है। जिसने पहले सिखाया, उसके गुरुजी ने उसको सिखाया, उसके गुरुजी ने उसको सिखाया, उसके गुरुजी ने उसको सिखाया, बहरहाल परंपरा तो चली। आप कोई अपने घर से थोड़ी आ आ ऐसा बनाया जाता है सीख आए, ये गुरु परंपरा से जाना। गुरु परंपरा से जैसा चला रहा है वैसे ही चला। हमारे अब यहां तो हम नहीं कहते भाई बंबई ठहरी, अभी भी नामकरण संस्कार जब होता है, घर में पंडित को बुलाया जाता है, गणेश पूजन होता है, गणेश पूजन करने के बाद उसके नक्षत्र राशि को देखा, उसके अनुसार भगवान के किसी नाम पर नाम रख दिया। अब भगवान का नाम जब लोगे, अपने बच्चे का नाम तो भगवान का नाम पुकार में आ जाएगा दो चार बार, वो बातें भूल गए, वो परंपरा, वो तो अंधविश्वास में हम नहीं पढ़ते, वो तो पुराना नाम हो गया। अरे हम पूछते हैं कि कौन सी चीज नई कर ली भाई, कान से सुना जा रहा था, अब अगर आंख से सुनाया जाने लगे तो हम जाने कि नया है, तो कान से ही सुनते चले आ रहे हैं। जिस इंद्री से जो काम पहले हो रहा था वही इंद्री से वही काम हो रहा है, केवल परंपरा को तोड़ करके और नए हिसाब से पुराने हिसाब से जा रहे हो। जरा विचार तो करो कहां पहुंचोगे। इसलिए परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। इन चार बातों से अंतःकरण शुद्ध होता है। अगर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, चिंतन शुद्ध हो जाएगा। जब आप एकांत में शांत मौन बैठेंगे तो उस समय आपको चिंतन आत्मा का, परमात्मा का, भगवान का ही होगा। समझ लो हमारा चित्त शुद्ध है, किसी की पूछने की जरूरत नहीं है। अगर नाशवान का चिंतन होता है एकांत में बैठने से तो संदो वह अशुद्ध है। अभी वासना है, आसक्ति है, राग द्वेष है, राग द्वेष अस्मिता विनिवेश अविद्या, इन्हीं तो पांच से बंधा हुआ जीव कहलाता है। इसलिए आप शुद्ध सत्व अंतकरण को शुद्ध करें। बोलो कृष्ण भगवान की जय।